संबंध पूर्व श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे के तीन श्लोकों में उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्वसमर्थता का वर्णन करते हैं। सर्वे इंद्रिय गुणाभासं सर्वे इंद्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृच। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित है और संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। व्याख्या सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है, प्रकृति का कार्य महतत्व, महतत्व का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंचमहाभूत, पंच महाभूतों का कार्य मन और दस इंद्रियां, और दस इंद्रियों का कार्य पांच विषय। ये सभी प्रकृति के कार्य है। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्य से अतीत हैं। वे चाहे सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। वे अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता था, वह बद्ध जीव भी जब परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणातीत अर्थात गुणों से रहित हो जाता है, तो फिर परमात्मा गुणों से बद्ध कैसे हो सकते हैं? वे तो सदा ही गुणों से अतीत है। अतः वे प्राकृत इंद्रियों से रहित हैं, अर्थात संसारी जीवों की तरह हाथ पैर, नेत्र सिर, मुख कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु उन उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, बिनु पद चलै सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करै विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बखता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्रान बिनु बास अशेषा। जैसे वे कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भी भक्तों का आलिंगन कर लेते हैं, नेत्रों से रहित होने पर भी प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं, रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोगों का आस्वादन करते हैं, आदि आदि। इस तरह ज्ञानेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा शब्द स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं, ऐसे वे वाणी से रहित होकर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं, चरणों से रहित होने पर भी भक्त के पुकारने पर दौड़कर चले आते हैं, हाथों से रहित होने पर भी भक्त के दिए हुए उपहार को ग्रहण करते हैं, आदि आदि। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्मेंद्रियों का सब कार्य करते हैं, यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करना है। असक्तम सर्वभृच्चैव, भगवान का सभी प्राणियों में अपनापन प्रेम है, पर किसी भी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति न होने पर भी वे ब्रह्मा से चींटी पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, उससे कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान प्राणियों का करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणी को कब किस वस्तु आदि की जरूरत पड़ती है, इसको पूरी तरह जानते हुए भी भगवान उस वस्तु को आवश्यकता अनुसार यथोचित रीति से पहुंचा देते हैं। अब वे प्राणी चाहे पृथ्वी पर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो तथा स्वर्ग में हो, त्रिलोकी में कहीं भी हो, छोटे से छोटा अथवा बड़े से बड़ा प्राणी हो, उन सब का पालन पोषण भगवान करते हैं। प्राणी मात्र के सुरिद्ध होने से वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध पवित्र करते रहते हैं। निर्गुणम गुण भोक्तृच, वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। तात्पर्य है कि जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। अर्थात भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। परिशिष्ट भाव, इस प्रकरण में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का वर्णन हुआ है। वह समग्र ही ज्ञेय तत्व है, अतः समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। वासुदेव सर्वम और सर्वम खलु इदम् ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद। इस श्लोक का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे वह परमात्मा से अलग नहीं है, सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है।